أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله हर किस्म का शुक्र उसी को वाजिब है जिसने हमें आज एक दफा फिर ये तौफीक अता फरमाई कि महज उसी के नाम और उसी के जलाल और उसी के जमाल की खातिर हम यानी अहमदी दुनिया भर से आज यहाँ इस आरजी मरकज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं जो हिजरत के दिनों में जमात अहमदिया की खिदमत के लिए हमें अता हुआ और खुदा ताला के फजल के साथ जमात को यहाँ बहुत से ऐसे काम करने की तौफीक मिली जिससे तमाम दुनिया में एलाए कलिमतुल्ला हो रहा है। ये वो मुल्क है जहाँ दूर दूर से बकसरत लोग आते हैं, एक ही दिन में हवाई जहाजों के जरिए तमाम दुनिया से इस कसरत से लोग यहाँ पहुँचते हैं कि जमात अहमदिया के मरकज के सालाना जलसा के बराबर यहाँ जायरीन एक दिन में वैसे ही इकट्ठे हो जाया करते हैं। लेकिन उन सब के मकसद जुदा जुदा हैं, दुनिया तलबी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनकी वजह से उन मकासद को पूरा करने के लिए जो उनकी ज़ात से वाबस्ता हैं वो इस मुल्क में भी जो मगरिब में एक मरकजी हैसियत रखता है और दूसरे मगरबी ममालिक में भी बकसरत आते जाते हैं। लेकिन आज इंग्लिस्तान की खुशनसीबी है कि आज यहाँ आने वाले महज अल्लाह की खातिर, उसके नाम की सरबुलंदी की खातिर, महज खुदा ताला की मोहब्बत में मगन और फिदा होते हुए बहुत से अम्वाल खर्च करके बहुत सी तकलीफें उठाकर रज़ाए बारी ताला के हुसूल के लिए यहाँ आए हैं। और इस पहलू से जलसा सालाना यू के जमात अहमदिया को एक खुसूसी इम्तियाज हासिल है जिसकी दूसरी कोई मिसाल मगरिब में मुनक़िद होने वाले न जलसों को है, न जलसों में मिलती है, ना मेलों ठेलों में मिलती है। इसकी इस गरज से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि महज अल्लाह की रजा की खातिर मिल बैठें, खुदा की और खुदा के रसूल की बातें सुने, अपने दिलों के जंगों को जो सबन लगते रहते हैं इस मौके पर धोएं और साफ करें और खुदा ताला के प्यार के नए जज्बे लेकर और खुदा ताला की मोहब्बत के नए जलवे देखकर वापस अपने अपने वतन को लौटें। इस इज्तिमा के कुछ तकाज़े हैं जिनकी तरफ मैं मुख्तसरन आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जहाँ कसरत से लोग इकट्ठे हों वहाँ कई किस्म के इहतमालात भी होते हैं और कई किस्म की जिम्मेदारियाँ हैं जो आम हालात से कुछ मुख्तलिफ होती हैं। तवक्कुआत के मेयार भी बुलंद हो जाते हैं और आम हालात में एक इंसान को एक मामूली लफ्ज करते हुए एक इंसान देखे तो उसे नज़रअंदाज भी कर देता है, लेकिन जब खालिसतन दीनी इज्तेमात में इकट्ठे होने वालों में से किसी से कोई लफ्ज देखता है तो बाज़ दफ़ा कमज़ोर को ठोकर लग जाती है। इसलिए आम हालात में जिन अखलाक और जिन आदाब का आप तबन मुजाहरा करते हैं, यहाँ इस मौके पर उन आदाब और उन अखलाक का मेयार कोशिश करके ज़्यादा बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको गैरों की निगाहें भी देख रही हैं, अपनों की निगाहें भी देख रही हैं। गैरों में भी मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं और अपनों में भी मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं। तकल्लुफ मना है, लेकिन अगर खुदा की खातिर तकल्लुफ किया जाए तो वो तकल्लुफ भी अच्छा लगता है। बस कोशिश करके अगर नेकी इख्तियार की जाए तो इस तकल्लुफ में कोई बुराई नहीं। हाँ, दिखावे की खातिर, दुनिया से दादे तहसीन लेने की खातिर अगर कोई नेकी इख्तियार की जाए तो वो नेकी बदी से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि नेकी के नाम पर खुदा को राजी करने की बजाय बनीनो इंसान को राजी करना मकसूद होता है, बस ये आम बदियों से बढ़कर शिर्क की हद में दाखिल हो जाती है। बस जब मैं ये कहता हूँ कि तकल्लुफ से भी नेकी करें और अपने आमाल की पहले से बढ़कर निगरानी करें, अपने रोज़मर्रा के अखलाक का मेयार पहले से बुलंदतर करें, तो दिखावे की खातिर नहीं बल्कि खुदा की रजा की खातिर आपसे यह तवक्को रखता हूँ। दुनिया में इंसान अपने रोज़मर्रा के दस्तूरुल अमल में आज़ाद होता है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तकाज़ों के पेश नज़र अपने अमाल की दुरुस्ती करते हैं। असल दुरुस्ती अमाल की वही है जो खुदा की खातिर हो और खुदा को निगाह में रख कर की जाए। वो अमाल जो दुनिया के तकाज़ों की खातिर दुरुस्त किए जाते हैं वो उसी हद तक दुरुस्त रहते हैं जिस हद तक दुनिया उनको देख रही होती है, और उनकी हद वहीं ख़त्म हो जाती है। तन्हाई के अमाल बदल जाते हैं जब दुनिया उनको नहीं देखती, उस वक्त और किरदार का इंसान जाहिर होता है। ये वो तजाद है जिसको दूर करना ज़रूरी है। बस जब आप तकल्लुफन महज़ अपने अमाल को दुरुस्त करेंगे, अपने अखलाक का मेयार बुलंद करेंगे, तो याद रखें कि ये एक आर्जी नसीहत नहीं है, बल्कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो नेकी आपने यहाँ कमाई होगी उसे जारी कर दें, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये वो फ़र्क है जो दुनियादार की नेकी और एक दीनदार की नेकी में हुआ करता है। दुनियादार की नेकियाँ दुनिया की खातिर होती हैं, वो मेयार बदल जाएँ, तकाज़े बदल जाएँ तो नेकियाँ भी बदल जाती हैं, मगर वो नेकियाँ जो खुदा की खातिर इख्तियार की जाती हैं, क्योंकि वो एक ज़ात लाफानी है और उसमें कोई तब्दीली नहीं, इसलिए वो नेकियाँ भी मुस्तहकम हो जाती हैं और करार पकड़ जाती हैं। ये वो खुसूसियत के साथ मेरा आज का आपको पैगाम है कि इन हालात के अलावा भी इस रुझान को अपने अंदर नश्वनुमा दें कि जो तब्दीलियाँ आपकी ज़ात में हों वो खुदा की खातिर हों और बंदों की खातिर नहीं, और तकल्लुफ भी करें तो खुदा की खातिर करें। मसलन इस मौके पर जब आप तकल्लुफ से अपने अखलाक को दुरुस्त करेंगे तो महज इसलिए नहीं कि लोग आपको देखकर आपको बेहतर समझेंगे, बल्कि इसलिए कि वो खुदा की जमात का तसव्वुर लेकर यहाँ आए हैं, आपकी बदियाँ देखकर उनको ठोकर न लगे, वो ये ना समझें कि खुदा वाले ऐसे होते हैं। बस अगरचे ये एक तकल्लुफ है, लेकिन इस तकल्लुफ में भी एक नेकी है और उसी नेकी को हमेशा मलहूज नज़र रखना चाहिए, वरना इंसान में रियाकारी पैदा हो जाती है। तो अव्वल तो अपने अखलाक को आम हालात से ज्यादा दुरुस्त करें और किसी के लिए ठोकर का मुजीब न बने। सख्त कलामी भी हो तो नर्म गुफ्तारी से पेश आए। कोई बुरा भला भी कह दे तो बर्दाश्त करें। किसी से तकलीफ पहुंचे तो हौसले का सबूत दें और हिल्म के साथ उस तकलीफ को बर्दाश्त करें। और हरेक से अच्छी बात कहें और सलाम को रिवाज दें। सलाम को रिवाज देना मुसलमान को हमेशा उसकी हैसियत की याद दहानी कराता है। जमात अहमदिया में अल्लाह ताला के फजल से सलाम का रिवाज बहुत है, लेकिन सलाम का रिवाज तो दुनिया की हर कौम में मिलता है। मुख्तलिफ किस्म के सलाम हैं और मुख्तलिफ किस्म के आदाब हैं, लेकिन इस्लाम ने जो सलाम का पैगाम हमें सिखाया है उसके साथ एक अमन की जमानत शामिल हो जाती है। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सिर्फ खुदा की तरफ से सलामती पहुंचे। उसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरी तरफ से तुम अमन में हो, और इस हैसियत से मैं खुदा से भी दुआ करता हूं कि वो भी तुम्हें अमन अता करे और उसकी रहमतें तुम पर हों। बस मोमिन से दूसरा मोमिन ही नहीं बल्कि हर मजहब वाला अमन में रहता है, और मोमिन का सलाम हर एक को अमन की जमानत देता है। इस जमानत के बहुत से तकाजे हैं। आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ना आपकी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, ना आपके अमल से किसी को तकलीफ पहुंचे, ना आपकी निगाह से किसी को तकलीफ पहुंचे, ना आपकी लमस से किसी को तकलीफ पहुंचे, बल्कि इसके बरक्स सलाम का अगला मजमून यह है कि उसके दुखों को आप अमन में तब्दील करने वाले हों। बस ये दोनों पहलू हैं जो हर अहमदी को हमेशा पेश नजर रहने चाहिए। सलाम का एक पहलू है कि मुझसे तुम्हें जरर नहीं पहुंचेगा, यानी सलाम कहने वाला ये यकीन दिलाता है कि मेरी तरफ से तुम अमन में हो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और दूसरा सलाम का पहलू यह है कि तुम्हारी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी बेकरारियों को करार में बदलूंगा। जो कुछ मुझसे मुमकिन है मैं तुम्हें रूहानी और कल्बी और जहनी सुकून पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस ये दूसरा पहलू ऐसा है जिसमें आपको अपने चारों तरफ ये निगाह रखते रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। किसी बच्चे को तकलीफ में देखें तो उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करें। किसी राह ढूंढते हुए को परेशान देखें तो आगे बढ़कर अस्सलामु अलैकुम कहकर अपनी खिदमात पेश करें और पूछें कि उसे क्या तकलीफ है, किस चीज की जरूरत है। गर्जी के महज मनफी पहलू इख्तियार न करें बल्कि मुस्बित पहलू भी आगे बढ़कर इख्तियार करें। बाज़ दफा बाज़ गैरों को जो हमारे जलसों में या किसी और मौके पर तशरीफ लाते हैं, ये शिकायत होती है कि जिस तरह हमारा एजाज होना चाहिए था वैसा एजाज हमें नहीं दिया गया। बाज़ दफा ये शिकायत होती है कि हम किसी शख्स के पास जाकर खड़े हुए और उसने झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो और किस चीज की जरूरत है। कुछ लोग गप्पों में मसरूफ थे, हम पास से गुजरे, उनको कोई परवाह नहीं हुई कि कौन आया है और कौन गया। और ऐसी शिकायत बाज़ दफा मुख्तलिफ ममालिक से बाज़ गैर मुस्लिम या गैर अहमदी मुसलमान लिखकर मुझे भी भेजते हैं, और उससे मुझे अंदाजा होता है कि दुनिया में किस नजर से जमात को देखा जा रहा है और कैसी कैसी उससे तवक्कुआत की जा रही हैं। ये एक पहलू से जमात को एक अजीम खराज तहसीन भी है, यानी जिन बुराइयों की इतला दी जाती है उन बुराइयों में भी एक खराज तहसीन पोशीदा है। कोई शख्स दुनिया में किसी दुनिया के मजहबी सरबराह को ये तैना ताना देते हुए दिखाई नहीं देगा कि तुम्हारे से ताल्लुक रखने वाले फलां शख्स ने अखलाक के आला तकाजे पूरे नहीं किए। ये वाकया जमात अहमदिया के सिवा आज दुनिया में कहीं रूनुमा नहीं होता, और जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है बिलाशुबा दुनिया के कोने कोने से हर शख्स جماعت سے توقعات ہی نہیں رکھتا بلکہ ہر شکایت اگر اسے توفیق ہو اور پتہ ہو کہ کیسے مجھ تک پہنچا جا سکتا ہے, مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا, کافر گردانہ, دنیا کی ہر بدی ان کی طرف منسوب کی, مگر جب کسی احمدی سے ان کو مالی لین دین میں شکوہ پیدا ہوا تو بڑے لمبے خطوط مجھے لکھے اور کہا کہ آپ کی جماعت اور اس کی یہ حالت, آپ کی جماعت کے فلاں شخص نے لین دین کے معاملے میں اعلیٰ اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کیا, اس نے بحثیت مسلمان جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کو ادا نہیں کیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نے دنیا کی کسی مولوی کو یہ چٹھی لکھی ہو کہ تمہاری طرف منسوب ہونے والے جو اسلام کے بلند ترین مقام پر فائز بتائے جاتے ہیں, جو تمام دوسری دنیا کو کافر گردانتے ہیں, ان میں سے فلاں کے اخلاق میں یہ گری ہوئی بات ہم نے دیکھی ہے. چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ ہر سال بلا شبہ مجھے چند چٹھیاں ایسی ضرور ملتی ہیں جو بساؤ بعض دفعہ بڑے بڑے صاحب اثر لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایک عام غریب انسان کی طرف سے, مگر مضمون واحد یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے فلاں شخص سے ہم نے لین دین کیا اور ہم توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی پہلو سے بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا, لیکن وہ نقصان کا موجب بنا ہے. اب آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے اس نقصان کو ادا کریں یا اس کو پکڑیں اور اس کی سرزنش کریں اور ہمارا نقصان اس کو کہہ کر پورا کروائیں. میں ان کو لکھتا ہوں کہ جزاک اللہ, آپ نے جماعت سے بلند توقعات تو وابستہ رکھی ہیں, جہاں تک میری کوشش ہے میں اخلاقی دباؤ ڈال سکتا ہوں, لیکن میں دنیا کی عدالت تو نہیں ہوں, اور آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی, لیکن جماعت نے کہ کسی فرد نے اگر واقعتاً آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو میں شرمندہ ضرور ہوں, اور جہاں تک میرا بس چلے گا میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا. تو توقعات کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو لوگ آپ کو دنیا کی ذلیل ترین چیز قرار دیتے ہیں وہ آپ سے اعلیٰ ترین اخلاق کی توقع رکھتے ہیں, اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کا معیار آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں, بس ان بری اطلاعوں میں بھی ایک عظیم خراج تحسین ہے جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. مگر اگر سال میں ایک بار بھی ایسی خبر پہنچے تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے ایک دانہ بھی گندا ہو, اور پھر وہ گندا دانہ جو غیر کی نظر میں آ کر جماعت کے لیے تان کا موجب بن جائے وہ تو دوہری تکلیف دیتا ہے. بس اس جلسے کے موقع پر بھی اس طرح اپنے انداز بنائیں, اس طرح لوگوں سے میل جول رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ جو واقعتاً ان کی دل کی گہرائی کی توقعات ہیں ان سے بڑھ کر آپ ان پر پورے اتریں. بعض چھوٹی چھوٹی مختلف نصیحتیں بھی ہیں جو اس موقع پر کرنی ضروری ہیں. جن لوگوں میں ہم یہاں آباد ہیں یعنی سرے کا ماحول ہے, وہاں اس ماحول میں بعض لوگوں کی اپنی عادتیں ہیں جو دیرینہ قومی عادتیں ہیں. مثلا صفائی کا ایک معیار ہے, وہ اگرچہ بدقسمتی سے اب پہلے جیسا نہیں رہا جیسا کہ انگلستان میں 20-25 سال پہلے ہوا کرتا تھا, لیکن اب بھی تیسری دنیا کے ممالک کے مقابل پر یہ معیار بہت بلند ہے, اور خصوصیت سے سرے کی کاؤنٹی میں کیونکہ نسبتاً زیادہ متمول لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں صفائی کا معیار ہندوستان کے بعد دوسرے حصوں کی نسبت بہتر ہے. کئی لوگ تماشا بینی کے لیے یہاں آئیں گے, کئی جماعت میں دلچسپی رکھتے ہوئے یہاں آئیں گے, اور چونکہ انہیں اخلاقی جانچ کا سلیقہ نہیں ہے یعنی گہرے اخلاق کی پڑتال نہیں کر سکتے, ان کی نظر سچی ہے وہ بیرونی نظر سے اخلاق کو جانچتے ہیں, اس لیے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جن غریب ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں उनकी इक्तसादी हालत ऐसी है कि तभी तौर पर सफाई का मैयार वहां गिर जाया करता है। वे कभी नहीं सोचेंगे कि लंदन के मशरक़ के किनारे में जहां गुर्बत ज्यादा है वहां गलियां उसी तरह सिगरेट के टुकड़ों और कागजों और गंदों गंदी चीजों और कोका कोला के खाली डब्बों से भरी पड़ी हैं और हर तरफ गंदगी फैली हुई है, हालांकि वो इंसान ही है। और ये नहीं सोचेंगे कि दरअसल उसकी वजह गुर्बत है और गुर्बत के नतीजे में बाद बदियां खुद ब खुद पैदा हो जाया करती हैं। तो इस पहलू से जब वो आपको देखेंगे तो जमात अहमदिया के आलमी नुमाइंदा की हैसियत से देखेंगे। अगर आपने वो बंद आते हैं जो गैर इरादी तौर पर आपने जगह पा गई हैं उनको पीछे अपने मुल्क में ना छोड़ा और यहां साथ लिए चले आए और यहां रहते हुए भी आपने वैसी ही बेपरवाही के सबूत दिया तो उससे एक जमात के नाम को नुकसान पहुंचेगा। बस ये भी वो एक खास चीज है जिसको आपको कोशिश के साथ पेश नजर रखना चाहिए। हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हमें तालीम दी थी वो हर पहल इंसानी जिंदगी के दिलचस्पी के हर पहलू में बुलंदतरीन थी, सबसे आला थी। और सफाई के भी ऐसे बारीक राज आपने हमें समझाए कि आज तक दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें भी उस मैयार तक नहीं पहुंची। यहां ज्यादा से ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि तुम कोई गंदी या फजूल चीज सड़कों पर पब्लिक जगहों पर ना फेंको और जो डब्बे इस काम के लिए मुकर्रर किए गए हैं उनमें डालो। हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आज से 1400 साल पहले इससे बहुत आगे निकल चुकी थी। आपने फरमाया रस्तों के हकूक हैं, वो रस्तों के हकूक अदा करो। और ईमान में ये बात दाखिल है कि अगर रस्ते पे कोई भी ऐसी चीज जिससे नजर को या किसी और चीज को इंसान को किसी रंग में तकलीफ पहुंचती हो, अजाब ही चीज का वो किसी पहलू से ताल्लुक रखती है, उसको उठाओ और उसको रस्तों से दूर कर दो। तो मोमिन की सफाई का मैयार महज ये नहीं है कि वो गंदगी ना फैलाए, बल्कि मोमिन की सफाई का मैयार ये है कि वो गंदगी जो दूसरों ने फैलाई है उसको दूर करे। बस अगर कि यहां हमारी तरफ से इंतजामिया की तरफ से बाज ऐसे खुदाम मुतायन हैं कि जो रास्ता चलते फेंकी हुई खराब चीजों को उठाएंगे और मुनासिब डब्बों तक मुनासिब जगहों तक उनको पहुंचाएंगे, उनकी सफाई का इंतजाम करेंगे। लेकिन मैं हर अहमदी से तवक्को रखता हूं इसलिए कि वो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, इसलिए कि वो आज आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफीर बनकर यहां आया है। इसलिए हर एक इस बात का ख्याल रखे कि आजाद की चीजों से रस्तों को और पब्लिक जगहों को साफ और पाक करे, जहां कोई खराब चीज गिरी पड़ी देखे उसको उठाकर मुनासिब जगह तक पहुंचाए, ताकि जो आम सफाई के मामलात हैं ये हमारे लिए इबादत बन जाएं। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदत को ईमान का आखिरी शोबा करार दिया है। फरमाया ईमान के 70 दर्जे हैं, उनमें से सबसे अदना दर्जा यह है कि इंसान रस्ते में गिरी पड़ी चीजों को उठाए और चलने फिरने वाले वालों को और दूसरे अपने भाइयों को उन चीजों की तकलीफ से बचाए। इसको अगर आप पूरी तरह समझ लें कि ये क्या बात फरमाई गई है तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि जिस तालीम का अदना शोबा ये है उसके आला शोबे क्या होंगे। यानी अदना शोबा ये नहीं कि आपने कोई तकलीफ दे चीज बाहर नहीं फेंकनी, अदना शोबा ये है कि लोगों की फेंकी हुई चीजें उठानी हैं और तकलीफ से की चीजों से रस्तों को बचाना है। इस जिम्मन में और भी बहुत सी तालीमात हैं, मसलन ये कि रस्ते के हकूक में ये भी है कि रस्तों पर खड़े होकर गप्पे ना लगाया करो। मुसाफरों का हक है कि रस्तों से गुजरें, अगर तुम टोलियां बनाकर वहां खड़े हो जाओ और गपशप में मसरूफ हो जाओ तो चलने वालों को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए वो तमाम रास्ते जो इस गरज से बनाए जाते हैं कि वहां लोग चलें और अपने अपने मकासद तक पहुंचे, उन रास्तों को खुला रखना और साफ रखना, ये हमारे से हमारी उन तवक्कुआत में शामिल है जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से ये फरमा कर दी हैं कि ये मेरी अदना तवक्कुआत हैं। बाकी सब तवक्कुआत इनसे ऊंची और बाला हैं, बस हमें अदना तवक्कुआत पर भी पूरा उतरना है और बाला तवक्कुआत पर भी पूरा उतरना है। हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की भी आदाब सिखाए और ऐसे अजीम आदाब हैं कि जहां तक मैंने तफसीली नजर डालकर दुनिया की महज़ कौमों को देखा है, आज तक उन कौमों में भी वो अखलाक उस शान से राइज नहीं हो सके। उसकी तफसील में यहां जाने का तो वक्त नहीं, लेकिन चंद एक बातें जो जलसे के मौके से ताल्लुक रखती हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खाने के वक्त एक दूसरे से सीना झपटी करना या धक्के देकर पहले पहुंचने की कोशिश करना, इसका इस्लाम में कोई मकाम नहीं है। इस्लाम के तसव्वुर में इसकी ऐसी हरकत की कोई जगह ही नहीं है, बल्कि इशार की तालीम है। जब भी तुम खाने की चीज को देखते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भाई का ख्याल आना चाहिए। खाब भूख से तुम्हारी कैसी बुरी हालत क्यों ना हो, अपने भाई को अपने ऊपर तरजीह दो। उसे कहो कि पहले आप तशरीफ लाएं, पहले आप इससे फायदा उठाएं, फिर मैं भी ऐसा करूंगा। हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम को अपने अमल के जरिए ऐसे बुलंद और अरफा मकाम तक पहुंचाया कि इंसान उस मकाम की तरफ देखे तो पगड़ी गिरती, सर से टोपी गिरती। वो वाकया जो आपने बारहा सुना हुआ है कि यमन में एक अजीम मिसाल है। एक मौके पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो भूख की शिद्दत से निढाल हो गए, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा का ये दस्तूर था कि मस्जिद का दर नहीं छोड़ते थे। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत थी कि मस्जिद का दामन पकड़ कर बैठ रहे कि किसी वक्त आ हजूर अपने घर से मस्जिद के सेन में निकलें, कोई बात फरमाएं तो उससे वो इस्तेफादा कर सकें और इस मौके को हाथ से ना जाने दें। देर में इस्लाम कबूल किया था, इसलिए उसके उस गुज़श्ता कोताहियों का इजाला इस रंग में किया कि असहाबु सुफा में शामिल हुए और हमेशा के लिए मस्जिद की होकर रह गए। बाज़ दफा फाकों से हालत यहां तक पहुंच जाती थी कि बेहोश हो जाया करते थे और लोग समझते थे कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है। और अरबों में रिवाज था कि बाज़ दफा किसी अरबों में रिवाज था कि मिर्गी को होश वाले को होश लाने की खातिर पुरानी गली बुसी जूतियां सुंघाया करते थे। तो वो जो लिल्ला भूख की खातिर बेहोश होकर मस्जिद के सेन में पड़ा होता था उसे बाज़ लोग जूतियां से सुंघाया करते थे। एक मौके पर हज़रत अबू हुरैरा से जब तकलीफ ज्यादा बर्दाश्त न हुई तो उन्होंने कुरान करीम की एक आयत को अपने तलब का जरिया बना दिया। बाज़ आने जाने वालों से उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि जरा बताओ तो सही इस आयत की क्या तफसीर है। और वो आयत ये थी, वयुफिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खफासा, कि वो लोग ऐसे हैं यानी मोमिन कि वो अपनी जरूरियात पर गैरों की जरूरियात को तरजीह देते हैं, गैरों की जरूरियात पर अपनी जरूरतों को तरजीह नहीं देते। भूख हो तो तब भी वो दूसरों को खाना खिलाने की ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। ये वो मजमून है जिसका इस आयत करीमा से ताल्लुक है। तो एक सहाबी आए और वो तफसीर करके आगे गुजर गए, फिर एक और सहाबी आए और वो तफसीर करके आगे गुजर गए, और फिर एक और सहाबी आए और वो तफसीर करके आगे गुजर गए। हज़रत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में ये बातें सुन रहे थे। जब आपने देखा कि किसी को इस आयत की तफसीर समझ नहीं आई और तस्वीर पूछने वाले का मुद्दा मालूम नहीं हुआ तो बाहर तस्वीर लाए और कहा, अबू हुरैरा भूखे हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसकी तस्वीर क्या है। मेरे पास कुछ दूध आया है, अल्लाह ताला ने कहीं से भिजवाया है, तुम्हारी तरह और भी तो भूखे होंगे, जाओ और तलाश करो, ये कोई और भूखा है तो उसको भी साथ ले आओ। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं जब ये सुना तो मेरा दिल दहल गया, एक प्याला दूध का होगा, मुझे इतनी भूख लगी है कि वो दूध का प्याला तो मुझे भी पूरा नहीं आ सकेगा। और आ हजूर ने फरमाया है कि जाओ और आवाज दो कि और भी कोई भूखा है तो आ जाए। सुना कि आपने आवाज दी और एक भूखा भी मिल गया, फिर और आवाज दी, फिर और मिल गया, फिर और आवाज दी, फिर और मिल गया, यहां तक कि चंद बयान किया जाता है कि 7-8 और भी भूखे हजरत अबू हुरैरा के साथ शामिल हो गए और वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपके पास एक दूध का प्याला था, आप तशरीफ फरमा हुए और अबू हुरैरा को अपनी बाई तरफ बिठा लिया। बाई तरफ बिठाने में गहरी हिकमत थी, क्योंकि इस्लामी रिवाज के मुताबिक जब मेहमान को खाना पेश किया जाता है तो दाई तरफ से शुरू किया जाता है, दाई तरफ दूसरे थे और सबसे आखिर पर अबू हुरैरा की बारी आनी थी। नाते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाई तरफ बैठे हुए गरीब मेहमान को से फरमाया कि दूध पियो। जब उसने पिया और उसका पेट भर गया तो आपने फरमाया कुछ और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मैं ये सुनता था कि कुछ और पियो मेरी जान निकल जाती। फिर दूसरे मेहमान की बारी आई, फिर उसके साथ भी यही हुआ, फिर तीसरे मेहमान की बारी आई, फिर उसके साथ भी यही हुआ, फिर चौथे की बारी आई, फिर उसके साथ भी यही हुआ, यहां तक कि वो प्याला हज़रत अबू हुरैरा तक पहुंचा और आप कहते हैं खुदा की कसम उसमें दूध मौजूद था, मैंने पिया और इतना पिया कि मैं शेर हो गया। तब आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा कुछ और पियो। फिर मैंने कुछ और पिया, फिर फरमाया अबू हुरैरा कुछ और पियो, फिर मैंने कुछ और पिया। कहते हैं कि यहां तक कि खुदा की कसम मुझे यूं लगता था कि मेरे नाखनों से दूध बह पड़ेगा। तब मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह बस। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला खुद पकड़ा और बकिया दूध खुद नोश फरमाया। ये वाकया बहुत ही अजीम वाकया है, उस आयत की ऐसी तस्वीर है जिस तक दुनिया के किसी आलम की कभी नजर नहीं पहुंची। इशार सिखा रहे थे, उस आयत की हकीकत बयान फरमा रहे थे। वह यो फिरूना आलान फुसेम बलो खाना बेहम फसवासा। भूख की शिद्दत से खत्म कैसे ही बेताब क्यों ना हो, दूसरों को तरजीह दो। तो अबू हुरैरा जो दूसरों से पूछते थे अपनी भूख मिटाने के लिए, आपने उनको उस बरतर मुकाम पर फायर कर दिया कि वो अपनी भूख को कुर्बान करते हुए दूसरों को खाना खिलाने वाले बन गए। ये उन्हीं का फैज था जो हुजूर अकरम की वजह से उनको पहुंचा कि उन सब के को भूखों के लिए इस आयत करीमा की एक मुजस्सम तस्वीर बन गए। और सबसे ज्यादा भूख में मुबतला हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा थे। वो दूध जो आपको आया था वो आसमान की तरफ से भेजा गया था, आपकी भूख मिटाने के लिए आया था, पर सबसे आखिर पर आपने जब वो दूध नोश फरमाया तो बताया कि तुम सब में सबसे ज्यादा इस आयत के मजमून को और इसकी हिकमतों को समझने वाला मैं हूं और मैं ही वो हूं जो कुरान को अपने रग रग में जारी कर चुका है। बस हमसे जो तवक्कोआत हैं वो तो इतनी बुलंद है, कहां ये बात के क्यू में खड़े हो धक्का न दो, कहां ये अजीम तालीम जिसकी कोई मिसाल दुनिया के मजाहब में कहीं और दिखाई नहीं देती। इस तालीम को हमें अपनाना है, इसी तालीम को हमने दूसरों में पेश करना है। इसलिए खाने के मौके पर या किसी और मौके पर अपनी गरज को गैरों की गरज पर तरजीह न दें। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने भाई का ख्याल रखें। ये वो तालीम थी जो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफसील के साथ और इस गहराई के साथ अपने गुलामों के रगो पैर में पैवस्ता कर दी, उनकी खून में दौड़ने लगी थी कि बड़े से बड़े इब्तलाओं के वक्त भी वो इस तालीम को नहीं भूले। चुनाचे बाद के जमाने का ये वाकया है, बाद के जमाने का तो नहीं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गालिबन जिंदगी का ये वाकया है कि एक गजवे में कुछ सहाबा जख्मी हुए और प्यास की शिद्दत से, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, जख्मों के अलावा वो बहुत बड़े इब्तला में पड़े हुए थे, एक घूंट पानी को तरस रहे थे। ऐसे मौके पर एक मशकीजा लिए हुए खिदमत करने वाला वहां पहुंचा। उसने किसी से कहा कि मुंह खोलो, मैं तुम्हें कुछ पानी पिला दूं। उसकी नजर अपने करीब ही सिसकते हुए एक और भाई पर पड़ी। उसने उस हालत में उस तरफ इशारा किया, कहा पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, फिर मेरी तरफ आना। और ये अजीब वाकया है जो तारीख इस्लाम ने दर्ज किया है कि जब उसके पास वो पहुंचा तो उसकी नजर अपने एक और भाई पर पड़ी, उसने उसकी तरफ इशारा किया। कितनी दफा ये हुआ हम नहीं कह सकते, मगर वो साखी बयान करता है कि जब मैं उस आखिरी शख्स तक पहुंचा हूं तो वो दम तोड़ चुका था। जब मैं वापस लौटा हूं तो बाद उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने पानी पिया, लेकिन वो शख्स जिसने पहले भेजा था मेरे पहुंचने से पहले दम तोड़ चुका था। तो हाजत की ऐसी शिद्दत के वक्त भी उन्होंने हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपके उस्वा को नहीं बुलाया। बस इन छोटी छोटी आजमाइशों में अगर आप पूरे ना उतरे तो कैसे दुनिया के मुरब्बी बनेंगे, कैसे दुनिया के मुअल्लिम बनेंगे? आपने तो सारी दुनिया को इस्लाम की आला तालीम सिखानी है। बस ऐसे मौके जब इज्तिमा होते हैं, जब इकट्ठे खाने खाए जाते हैं, इनमें इस्लामी अखलाक अपनी पूरी शान के साथ जलवागर होने चाहिए। लोगों की निगाहें मोहब्बत और तहसीन से पढ़ें कि ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम। खाने के आदाब कोई सीखे तो इनसे सीखे, रास्ता चलने के कोई आदाब सीखे तो इनसे सीखे, रास्तों के हकूक के आदाब कोई सीखे तो इनसे सीखे। रज़ी के जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम ही उनको अपनी पनाह नजर आए और इस्लाम ही में उनकी सारी बेकरारियों का इलाज हो। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम सलाम है, इसी के नाम सलामती है जो हर मुसलमान से वाबस्ता हो चुकी है। बस आप खाने के दौरान ऐसी हरकतें ना करें जिनसे जब मुझे इत्तला पहुंचे तो मैं शर्म से पसीने पसीने हो जाऊं। बाद लोगों ने मुझे जलसे से पहले खतूत लिखे और इस जलसे से पहले मुझे मुतनब्बे किया कि आइंदा ये बात देख लीजिए कि ये बातें ना हों। एक साहब शायद जो तशरीफ नहीं लाए वो लिखते हैं कि पिछली दफा मैंने देखा कि खाना जब तकसीम हो रहा था तो लेने वालों ने मुतालबे शुरू किए हुए थे कि दो बोटियां डालो और चार बोटियां डालो और पांच डालो और ये आलू हमारे किसी काम के नहीं और ये शोरबा हमारे किसी काम का नहीं है। वो जो तकसीम करने वाला था वो बड़े मुसीबत में मुबतला था। खाने का जो तवाज़ुन है वो तो नहीं बिगाड़ा जा सकता। खाने में कुछ शोरबा है, कुछ रोटियां, कुछ गोटियां हैं, कुछ आलू हैं, कुछ सब्जी और हो तो हो, मगर आपस का एक तवाज़ुन है। अगर एक मेहमान जिद करके कोई एक चीज ज्यादा मांगेगा तो जाहिर है कि दूसरे मेहमान के लिए वो चीज और भी कम हो जाएगी। नतीजतन ऐसा हो जाता है कि बहुत सा खाना जाया चला जाता है। बाद लोग अपने हिर्स में ये ख्याल करके कि हमें बहुत भूख लगी है ज्यादा चीज ले लेते हैं और फिर वो उनसे खाई नहीं जाती। तकसीम करने वालों ने मुझे बताया कि बसा औकात हमने देखा है कि प्यालों के अंदर आलू के टुकड़े, हड्डियां, बोटियां ऐसी जो काबिले इस्तेमाल थी उसी तरह बची रह गई, बाय ऐसे प्याले से जिनमें शोरबे बचे रह गए। तो वाकया ये है कि ये बहुत अदना अदना मामूली मामूली बातें सही, लेकिन आला अखलाक के तकाजे जिनसे किए जाते हैं उनके किरदार पर ये दाग हैं, उनको जेब नहीं देती। बाज जालिम और बेवकूफों ने इस्लाम पर थबतियां कसी, जिनमें से सलमान रुश्दी भी एक था। उसकी बदबख्ती देखें, वो ये कहता है कि कैसा इस्लाम है, छोटी छोटी चीजें हमें सिखाता है, छोटी छोटी बातों को पाबंद करता है। तहारत कैसे करनी है, उठना कैसे है, वुजू कैसे करना है, ये तो पुराने जमाने की जो मामूली सी चीज है आज के जमाने की हमें इसकी क्या जरूरत है। हालांकि वाकया ये है कि जो चीजें इस्लाम से किसी ने नहीं सीखी, दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमों से वाबस्ता होने के बावजूद भी आज तक वो उन चीजों से वो लोग महरूम हैं। सफाई के जो पाकीजा तकाजे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे फरमाए और जिनको पूरा करने की हमें बारीकी से तालीम दी, आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें उनसे नाश ना हैं या कल तक नाशना थी। दांतों की सफाई को लीजिए, बदन की सफाई को लीजिए, शरारत के बाद पानी से अपने आप को पाक साफ करने का मजमून देख लीजिए। हर मामले में 1400 साल पुराना इस्लाम आज के जमाने से ज्यादा आगे है। चुनाचे खाने के मामले में भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतना डालो जितना खत्म कर सको और तुम्हारी प्लेट में ज्यादा न बचे। चुनाचे अगर इसी तालीम को अपना लिया जाए तो दुनिया से बहुत सा ज़िया, खाने का ज़िया खत्म हो सकता है। हमारे वाकया यह है कि आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के हां भी इतना खाना ज़ाया हो रहा है कि अगर वो ज़ायाशुदा खाना किसी तरीके से गरीब मुल्कों तक पहुंचाया जाए तो बड़े बड़े मुल्कों की भूख दूर हो सकती है। अमरीका में एक दिन में जितना खाना ज़ाया होता है वो बाज अफ्रीकन ममालिक की सारा साल की भूख मिटा सकता है। कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला का रिज्क है, खुला रिज्क उनको अता हुआ, लेकिन बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि ये तमाम बनी नौ इंसान के लिए रिज्क अता हुआ है। इस दुनिया को खुदा ताला ने रिज्क पैदा करने की जो सलाहियतें बख्शी हैं सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है बल्कि हर इंसान की कम अज कम जरूरतें पूरी करने की खातिर है। बस जहां बचत की आदत ना हो, जहां ज़िया के खिलाफ तबीयत में एक रद्द अमल न पैदा हो, जहां मिजाज ऐसे न हो कि खुदा तआला के रिज़्क का एहतराम किया जाए और उसे बेवजह ज़ाया न किया जाए, वहां बड़ी से बड़ी तरक्की याफ्ता कौम भी अदना अखलाक के तकाजों से भी नीचे उतर आती है। ये अजीब नज़ारे आपको आज भी अमरीका में दिखाई देंगे कि वहां के लाखों भूखे, अफ्रीका को तो छोड़िए, हिंदो पाकिस्तान की बात ना कीजिए, अफ्रीका ही के लाखों भूखे उन डस्टबिनों से जहां हर किस्म के गंद फेंके जाते हैं खाने तलाश करके निकालते हैं और उससे अपनी भूख मिटाते हैं। और कोई हित नहीं है कि इस खाने को जो किसी इंसान के काम आ सकता हो गंदगी में फेंकने की बजाय ऐसा निजाम जारी किया जाए जिससे भूखे इस्तफादा कर सकें। बस हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में कैसी शानदार तालीम दी कि कोई खाना जाया नहीं होना चाहिए और अपनी प्लेट में उतना डालो जितना खत्म कर सको और साफ प्लेट छोड़ा करो। मुझे याद है एक दफा बंगाल हम गालबन वक्फ़ी के दौरे पर गए थे, हजरत मौलवी साहब मरहूम भी मेरे साथ थे। एक मौके पर थाने पर जो गालबन तरवा था या मुझे अब याद नहीं कौन सी जगह थी, खाने पर मुझे पता लगा कि यहाँ ये जमात बेहद मेहमान नवाज है और बहुत तकल्लुफात से काम लेती है, इसलिए जरा होश के साथ यहाँ खाना खाएं और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हजरत मौलवी मोहम्मद साहब मरहूम को एक लतीफा सूझा, उन्होंने मेरे कान में कहा कि यहाँ रिवाज ये है कि अगर मेहमान प्लेट खाली कर दे तो जरूर उसको भरते हैं, और मैं जानता हूं कि आप सुन्नत के पेशे नजर प्लेट जरूर खाली करेंगे और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपकी प्लेट को दोबारा ना भर दें और आपको फिर सुन्नत का ख्याल आ जाएगा और फिर आप खाली करेंगे फिर ये भर देंगे, कहां तक चल सकते हैं। आदमी का ये बात खुद समझ लीजिए, लेकिन मौलवी अबुल का साहब को ना बताना, उनके साथ उन्होंने ये खेल खेली। वैसे मैंने कहा देखें क्या होता है, मैंने तो अपनी प्लेट में मजबूरन थोड़ा सा छोड़ दिया क्योंकि ये ऐसी मुश्किल थी जिसका हल मेरे पास नहीं था, तो मुझे तो उन्होंने तकल्लुफन पूछा कि और खाएंगे, मैंने कहा नहीं बस जज़ाकअल्लाह, मेरा पीछा छोड़ दिया गया। मौलवी साहब ने प्लेट साफ की और उन्होंने दोबारा भर दी। मौलवी साहब एहतजाज करते रहे, खुदा का खौफ करो, एक ही प्लेट है मेरा, मैंने जितना खाना था खा लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हम तो जानते हैं बस आप और लीजिए। बड़ी मुसीबत से मौलवी साहब ने प्लेट खाली की तो दोबारा लेकर आ गए चावल और सालन। मुझे याद है मौलवी साहब ने यूं हाथ आगे फैला दिए थे और उनकी उंगलियों के बीच से वो चावल और शोरबा गिरा रहे थे। इस हालत पर हमें रहम आ गया, फिर हमने उनको समझाया कि यह किस्सा है, यहां का रिवाज यह है। तो आहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीम वहां भी राज होनी चाहिए। ऐसी मेहमान नवाजी जो उस तालीम से कि हदूद से तजावज कर जाए वो मेहमान नवाजी नहीं, वो ज़िया है और उसके नतीजे में तकलीफें भी पहुंच जाती हैं। वहीं हमारे में से एक को महसूस हुआ कि वो अब उससे रो सकता है, उसको पेट की तकलीफ हो जाए, और उसने पूछा कि अब इतना तुमने जबरदस्ती खिला दिया तो अब इसका इलाज क्या है। तो इलाज ये था कि फलां केला खाएं, उससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। उसने कहा मैं और बहुत खा चुका हूं, कहते हैं इलाज ही यही है। उसने कहा केला ज्यादा खाया गया तो कहेगा फिर उसका फलां दही खाएं उससे ठीक हो जाएगा। तो ये बिगड़े हुए अखलाक हैं, अखलाक के नाम पर कुछ गहरी आदतें बन गई हैं। मुसलमान का अखलाक खा वो मशरिक का हो खा मगरिब का, वो एक ही है और एक ही रहेगा, और इसी का नाम तौहीद खालिस है। वो खुल्क जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है वो आपके मिजाज का है, जैसा कि कुरान ने फरमाया ला फरकिया तुम वला कर दिया। ये खुदा का नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नूर है जो ना मशरिक का है ना मगरिब का है, सब में सांझा, सब में यकसा। तो वो अहमदी जिसने तमाम दुनिया को आला अखलाक की तालीम देनी है उसे इसी नूर से वाबस्ता होना पड़ेगा, इसी के कदमों से वो तालीम हासिल करनी पड़ेगी जो तमाम दुनिया को अखलाक को चमका सकती है। और ये बिल्कुल परवाह ना करें कि दुनिया को क्या ताने देती है कि छोटी छोटी बातों में भी तुम उनकी हदायत के ताबे हो। वही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके अखलाक को आपकी जिंदगियों को संवार सकती हैं और तमाम आलम को एक हाथ पर इकट्ठा कर सकती हैं। बस खाने के मामलात में भी कोई ऐसी बेहुदा बात नहीं होनी चाहिए जो इस्लाम पर ताना दे, ताने का किसी को मौका दे। खाना खाएं तो उतना डालें जितना आप खा सकते हैं, ऐसे मुतालबे न करें जिसके नतीजे में आपके दूसरे भाइयों को तकलीफ हो, ऐसे मुतालबे न करें जिसके नतीजे में रिज्क जाया हो। बाद लोग रोटियां इस तरह खाते हैं कि कुछ बीच में से खा ली, कुछ किनारों से फेंक दी, चुन चुन के बाद टुकड़े खाए और बाद जाया कर दिए। ये सब वो ज्या हैं जो मुसलमानों को जेब नहीं देते। इन छोटी छोटी बातों की अगर आज की तरक्की याफ्ता कौमें परवाह करें तो सारी दुनिया के रिज्क के मसाइल हल हो सकते हैं, मगर परवाह नहीं करते। पानी है तो पानी जाया किया जा रहा है, इस कसरत से पानी जाया करते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूं। मैं समझता हूं जिस तरह मुझे आदत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के नतीजे में, किसी जाती खूबी की वजह से नहीं, कि जिस तरह मैं पानी संभाल कर इस्तेमाल करता हूं, यानी कि टूटी बैठी चली जा रही है परवाही नहीं, मुंह पे छींटे दिए जा रहे हैं और फिर मुंह साफ करके दोबारा हाथ बढ़ाया, मैं तो ये करता हूं कि जहां तक बस चले टूटी बंद करके फिर पानी इस्तेमाल करता हूं, या फिर एक बर्तन रख लेता हूं उसमें पानी डालकर उससे लेता हूं। अगर सारा हिंदुस्तान इस किस्म की, ना सही बिल्कुल मेरे जैसी, मगर इस किस्म की आदत अपना ले कि पानी को जाया नहीं होने देना, तो आज जो टूरिस्ट गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं ये सारी मजबूरियां खत्म हो जाएं, इतनी बीमारियों से बचेंगे। और ये सोच भी नहीं सकते कि इन सारे मसाइल का हल 1400 साल पहले हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके थे। अभी कल ही एक टेलीविजन के एक प्रोग्राम की झलकी मैंने देखी, या परसों की बात है, उसमें ये पानी की बहस हो रही थी। एक साहब जो बड़ी देर के बाद हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा मेरे मुल्क का तुमने क्या हाल कर दिया है, मुझे तो वाहत होने लगी है। मैं अफ्रीका के मुल्क में इतनी मुद्दत रहकर वापस आया हूं, जिसका पानी तुम गंदा कहते हो वो तुम्हारे पानी से बेहतर है, क्योंकि लंदन में जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है ये वही है जो हमारे गंदगियों का पानी दोबारा साफ करके फिर पानी पीने वाले पानी में मिला दिया जाता है। उसने कहा उस अंग्रेज ने कि मुझे तो वाहियत होने लगी है, मैं तो बोतल के पानी के सिवा जो स्कॉटलैंड से आता है मैं तो और पानी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। लेकिन रोना यह था कि मेरे मुल्क का तुमने क्या बना दिया। जैसा कि मैंने बयान किया है आदतें गलत हैं, लापरवाही है रिज्क से, पानी से, खुदा की हर नेमत से, और पोल्यूशन की वजह से दुनिया मुसीबत में मुबतला है लेकिन कोई होश नहीं। हकीकत यह है कि इस्लाम की तालीम आज आपको तमाम आजाद से बचा सकती है, तमाम मुसीबतों से निजात बख्शती है। गौर तो करके देखें कि कितनी अजीम और कितनी तफसीली तालीम है जो जिंदगी के हर गोशे पर नजर रखती है, और सवाल इसके कि कोई अल्लाह के नूर से कलाम कर रहा हो उस तफसील से इंसान की बहबूद की तालीम नहीं दे सकता। बस आपने वो नेक नमूने यहां लोगों को दिखाने हैं खुदा और उसके रसूल की खातिर, अपनी रिया की खातिर नहीं। आप सैकल होके दुनिया के सामने चमकेंगे तो इस्लाम चमकेगा, खुदा और खुदा के रसूल की शान बुलंद होगी। इस नुक्ता नजर से आप अपना ख्याल रखें और अपने अखलाक की तरबियत करें, और फिर ये भी देखें कि गलत जगह पे कारें पार्क न की जाएं, ये वो रस्तों के हकूक के खिलाफ बात है। बाद दफा हमारी मस्जिद लंदन से के हमसायों को ये शिकायत पैदा होती है और हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो लिख के भेजते हैं कि हमारी कार के सामने कोई नमाजी आने वाला कार इस तरह पार्क कर गया है कि हमारी कार हिल नहीं सकती, हमारे गेट के सामने इस तरह कार खड़ी कर गया है कि हम अपनी कार अपने गेट में अपने खुद अपने घर में दाखिल नहीं कर सकते। ऐलान करवाने पड़ते हैं, कारों के नंबर बताने पड़ते हैं, फिर कोई साथ जाते हैं। लेकिन उनको होश करनी चाहिए। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रस्ते के आदाब बताए हैं ये उनके खिलाफ है। आपको हमसाये का भी ख्याल रखना होगा, अपने दूसरे मुसाफिर साथियों का भी ख्याल रखना होगा। फिर नावाजिब शोर जो बाज दफा ईशा की नमाज के बाद जब नमाजी फारिग होते हैं तो बाहर बातें करते हैं, उसके नतीजे में पैदा होता है। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी पेशगंदी फरमा दी थी। कोई एक बारीक सा हिस्सा भी अखलाक का ऐसा नहीं है जिसके मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम न मिलती हो। बस तो आपने फरमाया नमाज ईशा के बाद अपने घरों को लौटा करो और जिक्र इलाही किया करो और फिर आराम इस्तराहत किया करो, लेकिन उसके बाद मजलिसें लगाना जो अरबों का खसूसियत से दस्तूर था इसको आपने सख्त नापसंद फरमाया और नसीहत फरमाई कि ऐसी मजलिसें खुदा को पसंद नहीं है। ये तो मैं नहीं कहता कि घरों में आप जब मिल बैठते हैं तो जो मजलिस सजाते हैं वो खुदा को नापसंद है, क्योंकि जिन मजालिस का आहजूर जिक्र फरमाते थे वो मजालिस और रंग की मजालिस हुआ करती थी। वहां अपने खानदान की बुराइयां बयान होती थीं और फजूल तकबर की बातें होती थीं और शराबें चलती थीं और इसी किस्म की बदआयात होती थीं, जीए चले जाते थे। तो उनसे तो कुल्लियतन परहेज वैसे ही हर अहमदी को लाजिम है, लेकिन अपने नमाज के बाद की मजलिस अगर कोई लगानी है जिसमें अच्छी बातें भी हो सकती हैं, पाक बातें भी हो सकती हैं, देर से आए हैं, देर के बाद मिले हैं, दिन को वक्त नहीं मिलता, रात को चंद मिनट या एक दो घंटे बैठकर तबादला ख्याल करना उस तरह गुना नहीं है जिस तरह के मैंने बयान किया है। उस जमाने की मजालिस गुना बन जाया करती थी, मगर सड़कों पर आपको यह हक नहीं है, मस्जिद के सेनों में आपको यह हक नहीं है। यह हक तो किसी तरह नहीं है कि आपका आपके घर का शोर आपके हमसाये की नींद खराब करे। सुझाव यह कि मस्जिद से शोर इस तरह बुलंद हो कि हमसाये तबा तबा करने लगे और वो हमें ताने भेजें कि आपकी मस्जिद कैसी है जो जिसके नतीजे में हमारे बच्चे आराम नहीं कर सकते, हमें सुकून मुयसर नहीं होता, बेवक्त का शोर है। तो इस बात की एहतियात करें। यहां से जब हम फारिग होंगे तो बहुत सी नमाजें हैं जो इंशाल्लाह मस्जिद लंदन में अदा की जाएंगी। वहां आप में से जो तौफीक पाएंगे आने की, याद रखें कि वहां आपको हर गेज ऊंची आवाज में गुफ्तगू की इजाजत नहीं है, खुदा ने इजाजत नहीं दी, और उसके नतीजे में अगर किसी हमसाये को तकलीफ पहुंचेगी तो आप इसके जिम्मेदार हैं और खुदा के सामने जवाबदेह होंगे। अपने बच्चों को संभाल के रखें, बच्चे बार दफा बेकाबू हो जाते हैं, बेवजह शोर करते हैं, दौड़ी फिरते हैं और हरकतों के साथ भी वो नजर को तकलीफ देते हैं, शोर के साथ कानों को तकलीफ देते हैं। उनको संभालना और अपने नज्म ज़ब्त में रखना ये भी हर आने वाले का फर्ज है। फिर लंदन की गलियों में जब आप फिरेंगे, दुकानों में जाएंगे, वहां हुस्न खुल्क का मुजाहरा करें। बातों में मशरकी लोग सख्त बदनाम हैं, उन बातों से इज्तनाब करें। अहमदी के मुतालिक तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो चोरी करेगा, लेकिन आपको बाज लोग इस नजर से देख रहे होंगे कि गोया आप चोरी करना चाहते हैं और उसकी वजह से आपकी निगरानी भी होगी आप पूरी एहतियात करें कि किसी शक के मकाम पर ना पड़े, किसी को वहम भी ना आए कि आपकी हरकत मशकूक है और उसके नतीजे में आपकी निगरानी की जरूरत है। फिर गुफ्तगू में उसने सलूक से काम लें। जहां तक चोरियों का ताल्लुक है, इस जमन में मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि जब ऐसे इस्तेमाल होते हैं जहां खुदा के नेक बंदे इकट्ठे हों, वहां बाद शरीर इस नीयत से भी आ जाया करते हैं कि ये भोले भाले लोग हैं, इसलिए मौके से फायदा उठाओ, इनकी जेबें कतरो, इनके छोड़े हुए सामान चुरा लो, क्योंकि आने वाले ये समझते हैं कि ऐसे पाकीज़ा माहौल में हम आए हैं कि यहां चोरी का सवाल ही कोई नहीं। लेकिन ये भी भोलापन है, ये उनकी सादगी है। मोमिन से तो मोमिन महफूज है, लेकिन शरीर से तो मोमिन महफूज नहीं, उसको खुद महफूज होना पड़ेगा। और ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इतने बड़े हंगामों में जरूर एक ना एक शरीर आदमी भी दाखिल हो जाया करता है। हमने बारहा ये देखा है कि बाज ऐसे लोग जो न सिर्फ ये कि जमात से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनको बुलाया नहीं गया था, बल्कि बाहर से शरारत की नीयत से आए थे, वो भी किसी न किसी तरह टिकट लेकर हमारे इस निजाम में दाखिल हो गए। और अगर वक्त के ऊपर उनको ना पकड़ा जाता तो बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तो अपनी चीजों की हिफाजत करें, आप भी तो अपने आप के अमन में रहने चाहिए। इसलिए आपकी फरासत का तकाजा यह है कि अपने माल की पूरी तरह हिफाजत करें, खाम खा किसी दौर दूसरे को ना इत्तला में डालें, ना खुद इत्तला में पड़ें। पिछली दफा ये शिकायतें पैदा हुई थी कि कोई शरीर ग्रोह लड़कों का ऐसा आ गया था जिसमें जो औरतों में भी दाखिल हो जाता था, वहां भी चोरियां थी, मर्दों में भी बार दफा बड़ी बड़ी रकमों का नुकसान पहुंचाया। तो इसके लिए आप सबको नजर रखनी चाहिए। मोमिनों के मुतल्लिक ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है कि मोमिन बुद्धू माल होता है। हमारे हिंदू पाक में तो लोग यही कहते हैं कि मोमिन बुद्धू होता है। वो मोमिन पता नहीं कौन सा जो बुद्धू होता है। जो मोमिन हमने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना हुआ है वो तो ये है, आप फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, वो खुदा के नूर से देखता है, वो बुद्धू नहीं हुआ करता, वो दिलों के हाल भी पढ़ लेता है। मैं तो हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरासत की फिरासत का बयान करते हुए कुरान करीम फरमाता है कि तो उनकी पेशानियों से उनके दिलों के हाल जान लेता है। वो जो वाकया है अबू हुरैरा का मैंने सुनाया था, वो एक वाकया नहीं, ऐसे बेशुमार वाकयात रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी में गुजरे हैं कि चेहरा देखते थे और पहचान लिया करते थे, बात सुनते थे और पहचान लिया करते थे। बस जिस आका के आपके आप गुलाम हैं उससे फरासत सीखिए। आपसे तो चोरी की तवक्को नहीं, लेकिन चोरों को तो आपसे बहुत तवक्कोआत हैं। उन तवक्कोआत को झूठा कर दें, उनको रद्द कर दें, नामुराद बना दें। अपनी भी हिफाजत करें और अपने भाई के माल की भी हिफाजत करें। रजी के दिन में गुजरेंगे, बहुत ही पाकीज़ा माहौल में गुजरें, नमाजों का ख्याल रखें। कुरान करीम ने तौहीद के अकीदे के बाद सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया है वो इबादत का क़याम है। बस आप पर फर्ज है कि जितनी देर यहां ठहरें इबादत को अव्वलियत दें। बाज़ दफा ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि बाद नए अहमदी मसन मुझे बताते हैं कि हम उठे नमाज के लिए गए, तहज्जुद पे गए, ख्याल आया कि चलो ये नौजवान हैं सोए हुए हैं नमाज पर आ जाएंगे, लेकिन जब वापस जाके देखा तो नमाज के बाद भी इसी तरह सोए हुए थे। तो ये वो चंद दिन हैं जो गफलत की हालत में बसर नहीं होने चाहिए। मैं जानता हूं कि मुसाफरत में ऐसे हालात होते हैं कि इंसान ज्यादा थक जाया करता है, बाद दफा नींद गलबा कर लेती है, लेकिन ये तो इस्तिस्ना है, ये रोजमर्रा की बातें तो नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नमाज का मुहाफिज और निगरान रहना चाहिए और इस किरदार का यहां मुजाहरा होना चाहिए, मुजाहरे की खातिर नहीं बल्कि एक तभी हालत के तौर पर जो आपके साथ हमेशा के लिए आपकी जिंदगी का दिल बन चुकी हो। नमाजों को अवलियत दें, जब अजान आपके कानों में पहुंचे, अजान की आवाज आपके कानों में पहुंचे तो जल्द अज जल्द दूसरे कामों को छोड़कर खुदा की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद की तरफ दौड़ें और सुबह भी उठे तो मोहब्बत और प्यार के साथ अपने साथियों को उठाएं, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی نیند سے مغلوب ہو تو نرم ہاتھوں کے ساتھ پانی کی چیتے دیا کرتے تھے کہ اس طرح اس کی آنکھ کھل جائے. تو جو بھی طریقہ ہے اخلاق کا طریقہ ہونا چاہیے, گالی گلوچ کا نہیں اور تانو تشنی کا نہیں. وہ صاحب جنہوں نے مجھے لکھا تھا ایک موقع پر میں نے ان کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ اب غیر نہیں ہیں, آپ تو ایم جی ہو چکے ہیں. آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ پاکستان کے ایم جی آپ سے زیادہ اسلام پر حق رکھتے ہیں؟ اسلام تو سب کا ہے. اگر اپنے کمزور بھائی کو آپ نے دیکھا تو محبت اور پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے تھا, پانی کی چھینٹے دیتے, اس کی منت کرتے, اس کو کہتے کہ میاں تم خوش نصیب ہو کہ اسلام میں پیدا ہوئے, تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے اسلام سکھاتے. میں بعد میں آنے والا ہوں اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں. غرضی کہ تمہارے لیے ٹھوکر کا کوئی سوال نہیں تھا. اگر تم ٹھوکر کھاتے ہو انسانوں سے تو تم ابھی تک خدا کے نہیں ہوئے. جو خدا کا ہو جائے اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے دن سے سام اللہ, ایسے اروا پر اس نے ہاتھ ڈال دیا, ایسے مضبوط کرے پر اس کا ہاتھ پڑ چکا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس ہاتھ کو توڑ نہیں سکتی. کسی انسان کی اخلاقی کمزوری اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس اپنے دین کو ایسا مضبوط بنائیں کہ کسی شخص کا گندے سے گندا کردار بھی آپ کو متغلغل نہ کر سکے, اور اپنے دین کو ایسا بنائیں کہ دوڑتے ہوئے کو سنبھالیں اور ان کو سہارا دیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو سب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. بس آپ بھی گرتوں کو تھامنے والے بنے, لوگوں کو گرانے والے نہ بنے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.